जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे।
श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण और राधारानी एक दूसरे के मनोभाव की पहचान कराने के लिए भारत भूमि में नदिया जो वेस्ट बंगाल में पड़ा है वहां अवतरित हुए। भगवान इस कलयुग में मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि के लिए चिंतित है। कलयुग इतना नपावट युग है कि मनुष्य चाहे लाख करे उपाय फिर भी कोई उन्होंने ऐसी कोई गुणवत्ता या क्वालिफिकेशन नहीं पाया जाएगा जो कलयुग चारण करने के लिए स्वयं में कुछ शक्ति हो, ऐसा कोई उपाय नहीं। तो भगवान चिंतित है, वो त्रियुगी ही कहलाते हैं। वैसे स्केड्यूल इंकार्नेशन यानी कि नियमित रूप से हर एक युग में आते नहीं, तीन युग में ही आते हैं, छोटे युग में आते ही। ये कलयुग में भगवान अवतरित होते हैं होंगे उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, जबकि पहले तीन युग में तो स्पष्ट रूप से बताया जाता है। फिर भी भगवान आते हैं, किसी न किसी ढंग से आते हैं। तो शास्त्र में उसकी काफी गुणता रहस्य भरा हुआ अवतरण की बातें बताते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए भी हमारे में बुद्धि पर्याप्त नहीं होती। भगवान चिंतित है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव क्या है, ये कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, वो सब बताने के लिए हमें गुरु शिष्य परंपरा में जाकर श्री रघु गोस्वामी वो मनोभाव को जानते। रघु गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पट्ट शिष्यों में से एक है। सर्वप्रथम सनातन गोस्वामी, बाद में उनका एक छोटा भाई रूप गोस्वामी और अन्य चार गोस्वामी हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भक्त गोस्वामी, श्री गोपाल भक्त गोस्वामी और जी गोस्वामी। ये सभी भगवान के अत्यंत निकटवर्ती इनके पार्षद होते हैं, वो नित्य सिद्ध होते हैं। जब भगवान आते हैं तो भगवान की जो गुणता वाली प्रकटीकरण की जो रहस्य है उसको स्पष्ट करने के लिए हमें इन लोगों के कदमों में चलना पड़ता है। तो ये छह गोस्वामियों ने रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव को जानते हैं कि कैसे हम पतित जीव जो कलयुग में जिनकी कोई शक्ति नहीं, वो इतने पामर जीव हैं, इनका उद्धार करने के लिए जो योजना स्पष्ट करते हैं, ऐसे रूप गोस्वामी को हम सागर प्रदान करते हैं। और इस भूमि में यानी कि भूतल पर सब जगह यही सिद्धांत एक बना रहेगा जो सारे जीव मात्र का उद्धार करने वाला है। रूप गोस्वामी ने चेतन महाप्रभु के आदेश के अनुसार भक्ति तत्व समझाने के लिए उसमें सारे जो रसास्वाद है वो समझाने के लिए बहुत भारी रचना की, करने में इतनी आसान, पर लेकिन उन्होंने जो सिद्धांत बनाए हैं वो क्रमानुसार प्रगति करता है। जो भक्ति का विकास करने में हमें विधि भक्ति के नाम से जाना जाता है। भक्ति मनमानी चीज नहीं है, लोग ज्यादा भक्ति को इतनी कमजोर समझते हैं कि ये जिनकी पास फुर्सत है, जैसे कि स्त्री वर्ग घर में घर काम के अलावा दूसरा कोई काम नहीं, पुरुष लोग बाहर काम करते हैं, पॉलिटिक्स में खेलते हैं, जहां स्त्रियों का स्थान नहीं समझते, तो ये स्त्रियों बूढ़े बच्चों के लिए मंदिर में जाया करो और भक्ति करा करो, लेकिन भक्ति तत्व पता नहीं। रूप गोस्वामी स्पष्ट करते हैं कि भक्ति तत्व तो सनातन अवस्था वाला तत्व है, जो हरेक जीव आत्मा के लिए परमात्मा के साथ का नित्य संबंध में जो व्यवहार है वो प्रकट करता है। तो ये कोई मामूली चीज नहीं होती। भक्ति तत्व क्रमानुसार पैदा होता है। श्रद्धा होती है तो क्या हुआ, यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धि भवती तादृशी, जैसी जिसकी श्रद्धा वैसी उसकी सिद्धि होती है। कोई कमजोर श्रद्धा वाले की सिद्धि कमजोर ही रहेगी। अपने मन में हम सोचते हैं कि हम भक्ति करते हैं, लेकिन घर में कोई दूध बत्ती जलाई, दिया जलाया, भगवान की फोटो के सामने घुमा लिया दो चार बार और फिर सांसारिक गड़बड़ में छुपे तो भक्ति सिद्ध नहीं। हम परंपरा से ये थोड़े रीति रिवाज या थोड़ी प्रक्रिया जानते हैं, लेकिन जानने के पीछे रहस्य नहीं, समझते तो फायदा है। इसलिए ज्यादातर धार्मिक वृत्ति वाले मनुष्य कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के ये प्लान जो है, ये योजना है, तो योजना के अनुसार रूप गोस्वामी जैसे समझाते हैं तो विधि भक्ति द्वारा क्रमानुसार उसमें प्रगति होनी चाहिए। उसके पीछे देखरेख कौन रखेगा, कौन सुपरविजन रखेगा? हरेक मंदिर की ये जिम्मेदारी होती है, मंदिर से घंटी बजाने के लिए या अर्चना पूजना करने के लिए नहीं, भक्ति का एकमात्र छोटा सा अंग है अर्चना करना। जो अर्चना द्वापर युग का नियम था, द्वापरे परिचर्यायाम, तो अर्चना करके जो ताकत मिलती थी वो वहां लक्ष्मी नारायण की सेवा द्वापर युग का मनुष्यों के लिए जीवन के उद्धार का ये उपाय बताया था। जैसे कि सत्ययुग में तप और ध्यान जो करना होता है विष्णु पर, त्रेता युग में यज्ञ संपादित करके भगवान विष्णु का हम ध्यान करके भगवत धाम जा सकते थे। अब द्वापर परिचर्या में बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करके द्वापर युग में हम पवित्र होने का ये एकमात्र अर्चना का साधन था। कलयुग में कोई क्वालिफिकेशन नहीं होने के कारण ये तीनों अपने आप में तो ठीक है, लेकिन हमारी नारायकी, हम लायक नहीं। हम यदि लायक होते तो भगवान को इस ढंग का सोचने की आवश्यकता भी नहीं। तो कलयुग में भगवान का एकमात्र नाम जप के आधार पर भगवान की ताकत का अनुभव करना और भक्ति को क्रमानुसार आगे बढ़ाकर हमें भगवत धाम जाने का जो उपाय दिया है उसको सिद्ध करना है। शांत राष्ट्रीय कृष्ण भावानंद संघ के संस्थापक आचार्य श्रीमती ऋषि भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ने ये बड़ा साहस किया उनके गुरु के आदेश के अनुसार। तो जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि श्री चैतन्य मनोविष्ठल स्थापित ये तो भूतल है, चैतन्य महाप्रभु का मन में जो अभिष्ट मन एकमात्र जो भावना है कि सारे जीवों का कैसे उद्धार है उसकी स्थापना सारे भूतल में करने के लिए जो योगदान अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ दे रही है वो जगत गुरु श्री प्रभुपाद के असीम कृपा समझिए और आप सभी ये कृपा को पात्र हो रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी यहां 1975 में आए थे, उन्होंने यही भावना रखी कि सारा मॉरिशियस सर्वप्रथम देश बनेगा जो कृष्ण भावना को अपनाएगा। जब इस्कॉन का इस ढंग से विकास हो रहा है और आपको नगरी में भी बड़ा सुंदर मंदिर प्रस्तावित किया जा रहा है तो अवश्य ये भक्ति का विकास जो क्रमानुसार होगी और उसमें जो देख रहे यानी सुपरविजन के अनुसार आप भी व्यवस्थित रूप से अपने व्यक्ति का विकास करके भगवत धाम जाने के लिए सक्षम बन जाओ तो अवश्य यही महामना अवसर आप उसको आवकार दें, उसको स्वागत करें और आप पूरे ढंग से इनका लाभ पाएं। आप सभी हरे कृष्ण महामंत्र का गुंजारण से बोलिए फिर से
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा
हरे हरे
हरे राम
हरे राम
राम
राम हरे हरे।